ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. వెల్కమ్ టు ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. దిస్ సెషన్ ఇస్ ఆన్ కార్డియాలజీ, కొరోనరీ ఆర్టరీ డిజీజ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్. సో ఫర్ దిస్ సెషన్ వీ హ్యావ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ సతీష్ గుప్తా అండ్ డాక్టర్ రతన్ రాఠౌర్ and co-chairperson Dr. Mohit Gupta. Dr. Satish Gupta ko aapne kal subah sham ko inauguration mein suna hoga. He had pointed out a very beautiful thing that it is high time that we include spirituality as a medical subject in all the medical colleges or whatever in universities. As he pointed out that almost 80% universities in the US have spirituality as a subject, and our own country being the source of all spirituality for the world, we are far lacking behind in this. So I'll start with the Dr. Satish Gupta is also the head of cardiology and medicine at Global Hospital Mount Abu, and he's been the pioneer in research in the field of Raj Yoga meditation, being single-handedly responsible for conducting one of the largest trials in preventive cardiology in the field of coronary artery disease regression, CAD regression. Dr. Rathod is the professor and head of cardiology at MGM Medical College, Navi Mumbai, and Dr. Mohit Gupta is associate professor in interventional cardiology at GB Pant Hospital, New Delhi. So I'll start the ball rolling by asking a very simple question with Dr. Rathod first, that what has been, Dr. Rathod has been in spiritual knowledge for more than 17 years. Dr. Mohit Gupta, since his childhood, he's been practicing Raj Yoga meditation and he's got a very beautiful experience to share with you. So I'll start with asking Dr. Rathod about his experience of using spirituality in cardiology and the benefit his patients are gaining from it.
Aaj ka jo topic hai, lifestyle modification for coronary artery disease. Hum dekhte hai ki hamari ye jo bimari hai coronary artery disease ki, ye day by day hamari badhti ja rahi hai, kam nahi ho rahi hai. Ayurvedic kehta hai agar swasth rehna hai to paav garam, pet naram, matha thanda. लेकिन आज हो गया उल्टा, पांव हो गए ठंडे, पेट बाहर आ गया, माथा हो गया गर्म, बीमारी बढ़ गई. और इसके बावजूद भी हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, माथा ठंडा रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी हमारी बीमारी जो है वो कम नहीं हो रही है, बीमारी हमारी बढ़ती जा रही है. तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा फॉल्ट कहां पर है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन हम कर रहे हैं, फिर भी हमारी बीमारी बढ़ते जा रही है. ये हम आगे देखें कि इसका सॉल्यूशन क्या है. अगर हम देखें कैट का सिनारियो, तो प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों को नया हार्ट अटैक आता है. और ये बीमारी 1960 में 1% थी, आज ये बीमारी 12 से 14%, और नियर फ्यूचर में पूरा दुनिया जो है हमारे बारे में चिंतित है कि इंडिया जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज का एपिडेमिक होगा. WHO ने प्रिडिक्ट किया था 2015 तक ये बीमारी 35% होगी, और हम देख रहे हैं अब कि ये बीमारी जो है ये डॉक्टर को भी नहीं छोड़ रही है. यंग कार्डियोलॉजिस्ट, यंग कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं. अब हम देखें कि लाइफस्टाइल बीमारी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्यों जरूरी है. इसलिए जरूरी है कि ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो मेन कारण है ये है फॉल्टी लाइफस्टाइल. दैट इज द ओनली रीजन फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज. इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा. प्रॉपर, आई सेड प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. अब हम देखें कि हम अगर कॉजेज देखें कि कारण क्या है हार्ट अटैक की बीमारी का, तो हम कहते हैं कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स, फिजिकल रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज और खून में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ये 6 रिस्क फैक्टर हम बोलते हैं. लेकिन ये 6 रिस्क फैक्टर में केवल 2 गुना या 3 गुना चांसेस ज्यादा रहते हैं हार्ट की बीमारी होने के नॉर्मल पर्सन से. फिर ये रिसर्च हुआ कि कि किसी व्यक्ति को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो रिसर्च हुआ तो ये नॉन फिजिकल रिस्क फैक्टर्स ये सामने आए, जिसमें चिंता, फिकर, डिप्रेशन, नफरत, सीनिसिज्म, अकेलापन, एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसका हमारे पास इलाज नहीं है। वी डोंट हैव सोल्यूशन फॉर दैट अनलेस, जब तक आप प्रॉपर अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते एट स्पिरिचुअल लेवल, बिकॉज ये जो है हमारे संस्कार है, ये स्पिरिचुअल संस्कार है, ये बॉडी के संस्कार नहीं है। और जब तक आप स्पिरिचुअल संस्कार का परिवर्तन प्रॉपर विधि से नहीं करते हो, तब तक आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज से आप बच नहीं सकते। फिर हम देखते हैं पर्सनालिटी, दो टाइप की पर्सनालिटी कहते हैं हम लोग, टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी माना जल्दबाजी वाले, एंग्जाइटी वाले, एग्रेसिव, एजिटेटिव, एक समय में बहुत सारा काम करने वाले, फास्ट प्रोग्रेस वाले, ये है टाइप ए पर्सनालिटी वाले। टाइप ए पर्सनालिटी वालों को हार्ट अटैक ज्यादा आता है। दुनिया की कोई मेडिसिन आपकी पर्सनालिटी बदली नहीं कर सकती। जब तक आप इस पर्सनालिटी को अपने स्पिरिचुअल लेवल पे चेंज नहीं करें, क्योंकि आपके संस्कार है और संस्कार है आपके सोल के अंदर, माइंड के अंदर, जब तक आप इसको परिवर्तन नहीं करेंगे आपका पर्सनालिटी चेंज हो नहीं सकती। फिर मैंने यहां पर आपको दिखाया है कोरोनरी आर्टरीज, ये खून की नली है लाल वाली, जिसमें मैंने तीन प्रकार के ब्लॉक दिखाए हैं। एक ब्लॉक है जहां 70% से ज्यादा है, दूसरा ब्लॉक है 50 से 70%, और तीसरा ब्लॉक है 50% से कम। हम लोग एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करते हैं जब ब्लॉक 70% से ज्यादा होता है। 70% से अगर ब्लॉक कम है तो यहां पर एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं होती है। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किस ब्लॉक में होता है, कोई बताएगा मुझे? सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का प्रमाण किस लेवल पे होता है, जब ब्लॉक 70 से ज्यादा है, 50 और 70 के बीच में है, या ब्लॉक 50 के नीचे है? तो मैं आपको बताऊं, ऐसे इतने सारे ट्रायल हुए हैं कि इसमें ये दिखाया गया है कि 50% हार्ट अटैक आता है जब आपका ब्लॉक 50% से नीचे होता है, और अनादर 25 से 30% हार्ट अटैक आता है जब आपका ब्लॉक 50 और 70% के बीच में। दैट मीन्स 70 के नीचे वाला जो ब्लॉक है, जहां पर हम एंजियोप्लास्टी और बाईपास करते नहीं है, यहां पर हार्ट अटैक आने की संभावना, पॉसिबिलिटीज 70-75% है। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेडिकल साइंस में जब तक आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करें। और हम इंपॉर्टेंट देते हैं वो 70% के ऊपर वाले ब्लॉक को, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स है, लेकिन हार्ट अटैक आने के चांसेस केवल 20-25% है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम आज देखते हैं 90% जो बीमारी है स्ट्रेस से रिलेटेड है या मानसिक रिलेटेड है। सोल्यूशन हमारे पास नहीं है अनलेस यू चेंज यूअर प्रॉपर लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड। फिर हम देखें कि इसका इलाज है बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी। एक बाईपास सर्जरी विल कॉस्ट यू मिनिमम 1.5 लाख रुपीज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो उसे 1.25 लाख में, आजकल गवर्नमेंट की स्कीम है, 1 लाख में हो जाता है, फ्री में भी होता है। लेकिन बाईपास सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो 2.5 मिलीमीटर आर्टरी में ग्राफ्ट लगा रहे हो, कोरोनरी आर्टरी की साइज होती है 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर की आर्टरी में आप नलियां जोड़ रहे हो, तो आपका सर्जन इज मैटर्स। वो सर्जन किस स्किल से आपका ग्राफ्ट लगाता है ये बहुत मैटर करता है। इसलिए अच्छे जो सर्जन है उनका नाम है, जिन सर्जन के द्वारा किया हुआ ग्राफ्ट 15 साल चलता है, 18 साल चलता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि दो प्रकार के बाईपास होते हैं, एक है पांव में से नसें निकालती है, वेनस ग्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वेन के ग्राफ्ट जो है दे आर ब्लॉक, 80% ऑफ द ग्राफ्ट आर ब्लॉक बाय 8 ईयर्स, मैक्सिमम दे ब्लॉक बाय 10 ईयर्स। बट जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी के ग्राफ्ट होते हैं जिसको हम लाइव ग्राफ्ट बोलते हैं, लाइव ग्राफ्ट दे लास्ट फॉर 12 ईयर्स 15 ईयर्स 18 ईयर्स, डिपेंड्स किस अच्छे सर्जन ने किया है। और हम देखते हैं कि दोनों इंटरनल मेमोरी आर्टरी का ग्राफ करने वाले बहुत कम डॉक्टर होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द बाईपास सर्जन दे ऑपरेट विथ वन इंटरनल मेमोरी आर्टरी, बाकी फिर हाथ से रेडियल आर्टरी निकालेंगे या तो विनस आर्टरी निकालेंगे जिसकी लॉन्गेविटी कम होती है. तो मेरा कहने का मतलब है कि बाईपास इज ऑल्सो नॉट द परमानेंट सोल्यूशन. फिर एंजियोप्लास्टी अगर आप देखें तो एंजियोप्लास्टी में भी अगर आप मेडिकेटेड स्टेंट डालो तो भी आपको मिनिमम 150,000-70,000 का खर्चा आता है. और मेडिकेटेड जो कॉस्टली इंपोर्टेड स्टेंट है इसमें 7% रिस्क है आपका रीस्टिनोसिस का, फिर ब्लॉक हो सकता है. एवरी ईयर 7% रिस्क ऑफ रीस्टिनोसिस. इफ यू गो बाय द बेयर मेटल स्टेंट 20-25% चांसेस ऑफ रीस्टिनोसिस. तो ये सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि हमारे इंडियन सिनारो में 25% पेशेंट ऐसे होते हैं हार्ट के जिनमें डिफ्यूज कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है. पूरी तीनों नलिया ब्लॉक है, डिस्टल नलिया ब्लॉक है, जहां पर एंजियोप्लास्टी हो नहीं सकती, बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती. और केवल सोल्यूशन है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. नो बडी कैन डू एनीथिंग फॉर दिस 50% ऑफ द पेशेंट. फिर हम देखें कि इसका रीजन क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग. आज मेडिकल साइंस ने देखिए कितनी तरक्की की, अच्छे अच्छी एंजियोप्लास्टी हम कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां है, इसके बावजूद भी हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज का प्रमाण ये बढ़ते जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पेशेंट को फुल्ली ट्रीट नहीं कर रहे, होलिस्टिक कंप्लीट ट्रीट नहीं कर रहे, हम लोग आधा पार्शियली ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को. क्या ट्रीट कर रहे हैं? हम लोग कहते क्या है, हु आर वी? हम लोग कहते हैं वी आर ह्यूमन बींग, लेकिन वी आर टैकलिंग ओनली द ह्यूमन पार्ट. किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर इस बींग के बारे में, सोल के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. वी आर ट्रीटिंग ओनली द बॉडी. ह्यूमन इज ए बॉडी, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप एंड मेडिटेशन, मेडिसिन, दिस इज वॉट वी आर डूइंग एंड दैट इज ओनली फॉर बॉडी. And what about the being? अब जो मैंने risk factor बताया आपको, non physical risk factor, personality, ये आपके जो संस्कार है ये human में नहीं है, body में नहीं है, ये being में है, आत्मा में है, mind में है. और जब तक आप शरीर का और mind का, soul का इलाज नहीं करेंगे तब तक आपको complete solution मिल नहीं सकता, result आपका आ नहीं सकता. आज हम लोग क्या है, आज हम लोग भाग रहे, खूब भाग रहे, शरीर से भाग रहे, माइंड से भाग रहे, हम डॉक्टर लोग भाग रहे. मैं भी जब मैंने जब शुरू किया था प्रैक्टिस तो मैं भी 7 हॉस्पिटल में जाता था, लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, इस विद्यालय से आया, तो अब मैं केवल 2 या 3 हॉस्पिटल में जाता हूं. और आज हम लोग इतना भाग रहे, 7 जगह 5 जगह, बॉम्बे के अंदर में एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जाने में 1.5-2 घंटा लगता है. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हम जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को भी, पिछले महीने में बॉम्बे में एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम KEM हॉस्पिटल, डॉक्टर धर्माधिकारी, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 45. अनदर सर्जन, मिस्टर डॉक्टर देसाई, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, ही डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 45. हम लोग भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका हमें एंड रिजल्ट क्या होगा. इस तेज भागने से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है, आपने सुनी होगी. एक हाई प्रोफाइल कंपनी का एग्जीक्यूटिव अपनी महंगी गाड़ी में तेज चला रहा था, और इतने में उसने देखा कि चलते चलते गाड़ी के ऊपर किसी ने पत्थर मारा. गाड़ी रोकी, महंगी गाड़ी थी, गाड़ी आगे रोकी, गाड़ी के बाहर निकल के देखा तो दरवाजे पे डेंट था. बहुत गुस्सा आया, इतनी महंगी गाड़ी डेंट, साइड में देखा कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे देखा तो एक छोटा बच्चा 6-7 साल का, एक व्हील चेयर और एक बड़ा बच्चा नीचे गिरा हुआ. वो एग्जीक्यूटिव गया, पीछे गया और उस बच्चे को बहुत डांटा कि इतनी महंगी गाड़ी तुमने पत्थर मारा, अब इतना कितना खर्चा आएगा. फिर बोला तू ये बता, तूने मेरे गाड़ी पे पत्थर क्यों मारा? तो वो बच्चा कहने लगा, सर कि ये मेरा भाई जो है ये पैरालाइज है, इसको मैं व्हील चेयर पे घुमा रहा था, व्हील चेयर के नीचे पत्थर आया, व्हील चेयर लुढ़क गई, मेरा भाई नीचे गिर गया, मैं इसको उठा नहीं सकता हूं, तो मुझे मदद की जरूरत है. तो पिछले 1 घंटे से मैं गाड़ी को रोक रहा था कि कोई मेरी मदद करे, कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था, तो मुझे गाड़ी को रोकने के लिए पत्थर मारना पड़ा। उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, उसने उसकी मदद की, बच्चे को उठाया, घर गया और उसके बाद में उसने उस डेंट को रिपेयर नहीं किया। जब भी वो उस डेंट को देखता तो उसको उसकी अंतरात्मा ये एहसास दिलाती कि देख जिंदगी में तू इतना फास्ट मत भाग, देख जिंदगी में तू इतना फास्ट मत भाग कि तुझे रोकने के लिए भगवान को भी पत्थर न मारना पड़े। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आई एम ए प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट, अपनी स्पीड को जरा स्लो करो, अपने शरीर के अलावा इस आत्मा के बारे में भी सोचो और इसका शरीर का और आत्मा का इलाज करो जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है। 1937 के पहले इस सोल का इलाज, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। अब आपने देखा होगा कि दुनिया में सोल के बारे में 5 मिनट बोल नहीं सकता है, इस विद्यालय में सोल के बारे में 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर ले सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इस विद्यालय के पास में कितना नॉलेज है और ये नॉलेज हमें कहां से मिल रहा है। 98 में एक डॉक्टर पैदा हुआ जिसको ये करंट मिली कि मैं पेशेंट का इलाज, शरीर का और आत्मा का इलाज क्यों ना करूं, और उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 98 में 3 पेशेंट के साथ। 3 पेशेंट को व्यक्ति, वो डॉक्टर सुबह से लेकर, सुबह में 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक केवल 3 लोगों के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन सिखाता था और उस व्यक्ति को उस बीइंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा 99 में या 2000 में, तो मैं देखता था वो डॉक्टर मेडिटेशन करता था, बाबा से टचिंग लेता था, ट्रांसपेरेंसी बनाता था और क्लास में, और उस समय ये लैपटॉप नहीं था, ओवरहेड प्रोजेक्टर होते थे, तो ट्रांसपेरेंसी से वो लेक्चर लेता था हर चीज ऑलमाइटी से पूछ के, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। और इस तरह से उस व्यक्ति ने 98 में प्रोजेक्ट शुरू किया और आज हमें वो वंडरफुल रिजल्ट आ रहा है। और वो व्यक्ति है, आपको पता है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है डॉक्टर सतीश गुप्ता। मैंने देखा कि इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक सबसे बढ़िया बात कि 25 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे, 1 साल का भी बच्चा है, हार्ट अटैक आया हुआ है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट में जुड़ा तो उनका डर खत्म हो गया। यह है सबसे बड़ी बात फॉर ए हार्ट अटैक पेशेंट, कि अगर आपके अंदर से डर खत्म हो जावे, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो कोलैप्स होते हैं, सडन कार्डियक डेथ होती है, ये केवल डर के कारण, सिंपैथेटिक एड्रेनलिन सिक्रीशन के कारण। तो इतना वंडरफुल ट्रायल, अब हम डॉक्टर गुप्ता से देखेंगे कि ये किस विधि से नलिया खुलती है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इसके अलावा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं सोचा कि डॉक्टर गुप्ता ही आपको बताएंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने ये भूमिका आपके सामने रखी कि लाइफस्टाइल माना प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या है, ये डॉक्टर आपको अभी हमारे सामने बताएंगे। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति, थैंक यू डॉक्टर राठौड़ फॉर टेलिंग अस ए वेरी ब्यूटिफुली अबाउट द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड केसेस ऑफ हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और एट द सेम टाइम इन्होंने जो जिक्र किया कि स्पिरिचुअलिटी कितना हेल्प कर सकती है इन रिलीविंग अस द बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि बहुत रिसेंटली 1 महीने पहले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड एज द नंबर 2 मेडिकल कॉलेज आफ्टर एम्स इन आर कंट्री, वहां पर ऑफिशियली MBBS मेडिकल स्टूडेंट्स को राजयोगा मेडिटेशन में कोर्स कराने का, मेडिटेशन कराने का प्रोसेस लास्ट मंथ शुरू हो गया है थ्रू एन ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ डीन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। And I am sure this is a beginning which can be easily replicated at any of the places in the medical college or hospitals where each of you are working, because ek government sector mein is tarike ek shuruaat hona ek bahut badi uplabdhi hoti hai jisko hum dheere dheere sab jagah copy kar sakte hain. So our next speaker is Dr. Mohit Gupta. He is associate professor in cardiology, and GB Pant Hospital is a very popular hospital in cardiology services in not only Delhi but entire country. वहां पे सबसे ज्यादा कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स का बर्डन है. ऑलमोस्ट 50-60 प्रोसीजर्स एंजियोग्राफीज एंजियोप्लास्टीज डेली की जाती हैं. तो डॉक्टर मोहित गुप्ता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना एक्सपीरियंस बताएं ऑफ द यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ कार्डियोलॉजी एज वेल एज टू फोकस ए लिटिल ऑन द प्रैक्टिकल एडवाइस ही गिव्स टू डॉक्टर्स टू हिज पेशेंट्स इन जनरल और उसके क्या रिजल्ट्स देखे हैं एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न. डॉक्टर मोहित गुप्ता.
ओम शांति. गुड आफ्टरनून. डॉक्टर सतीश गुप्ता हमारे सामने बैठे हैं और मैं जरूर आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब अपना जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, उनके पेशेंट्स भी यहां पर आए हैं, आपको लाइव केसेस दिखाएं और अपनी स्टडी को आपके समक्ष रखें. और मेरा तो यही आपके सामने कहना है कि अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ. और यही सभी पेशेंट्स की हालत है, क्योंकि मुझे खराब लगता है जब मैं ऑपरेट करता हूं. हमारे यहाँ 60-70 केसेस पर डे होते हैं और अभी हमने जो बिल्कुल रिसेंटली स्टडी कंक्लूड की है अपने नए स्टूडेंट्स को देकर, उसमें हमने देखा कि 100 केस जो हम लोग डेली के अगर करते हैं तो उनमें से 15-20% की एज जो है, हमने वेरी यंग एमआईज को स्टडी किया जिसमें लेस देन 30 ईयर्स के जो यंग लड़के हैं बच्चे हैं वो हमारे पास हार्ट अटैक लेकर आते हैं. और उसमें हमने देखा कि स्ट्रेस जो है, फैमिली प्रेशर है, पर्सनल डिस्कॉर्डेंस है, मेराइडल डिस्कॉर्डेंस है, इस तरह करके जो हमारे पास एविडेंस है वो थर्ड हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है आफ्टर स्मोकिंग एंड डायबिटीज. स्मोकिंग एंड डायबिटीज नंबर वन पे आते हैं और तनाव जो है नंबर थर्ड रिस्क फैक्टर पे है, जिसको लैंसेट नाम की जर्नल ने बड़ी क्लियरली इंटर हार्ट स्टडी में एक्नॉलेज भी किया है. तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बड़े प्रैक्टिकल मायने हम अपने पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि समय का बहुत हमारे पास अभाव होता है, वहां पर बहुत कम टाइम होता है. तो वो किस तरह हम लोग करते हैं मैं बिल्कुल एंड में भाई साहब की टॉक के बाद आपको 5 मिनट के अंदर समराइज करूंगा, जो आप लोग बड़ी सिंपली अपने पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बड़ी प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं. और इस प्रोग्राम को किस तरह प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग आपके प्रश्न भी लेंगे और हम लोग भी डिस्कस करेंगे. लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले हम डॉक्टर गुप्ता को सुनना चाहेंगे जिन्होंने इसमें डीप लेवल पर रिसर्च भी की है और प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा रिवर्स भी किया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, और जो वेरी वेल पब्लिश स्टडी है इंडियन हार्ट जर्नल में, वेरी वेल कोटेबल स्टडी है जिसके बारे में हम आगे फर्दर रिसर्च भी आजकल कर रहे हैं. ओम शांति. फिर हम बाद में बात करते हैं. डॉक्टर सतीश गुप्ता को हम इन्वाइट करना चाहेंगे. आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, वेरी डिफिकल्ट ऑफन टू गेट इन टच विद डॉक्टर सतीश, जो अपने पेशेंट्स के साथ काफी एनग्रॉस रहते हैं. और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने समय निकाला. और ब्यूटी है कि आप केवल थ्योरी नहीं, आप प्रैक्टिकल केसेस भी देखेंगे जो उन्होंने डील किए हैं.
थैंक यू डॉक्टर मोहित. ओम शांति. आई बी शेयरिंग विद यू टुडे प्रैक्टिकल लाइव केसेस व्हाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. जस्ट टू शो यू दिस, फर्स्ट आई विल कॉल मिस्टर राजेश मित्तल. राजेश मित्तल सामने, कैन यू सी देयर? ही इज मिस्टर. आप चेयर ले लो, चेयर दे देंगे, प्लास्टिक चेयर दे दीजिए इनको, यहां पर यहां बैठ जाइए. एक माइक भी दे दें तो अच्छा रहेगा, बीच में कुछ पूछना होगा तो. ही इज मिस्टर राजेश मित्तल. इसकी इनकी फर्स्ट, ही इज ए हाइपरटेंसिव डायबिटिक स्मोकर सेडेंटरी लाइफस्टाइल. And he had, you know, first angioplasty to LAD in 2007 with a drug-eluting stent. 2010, the symptoms reappeared and LAD had developed instant restenosis and another disease came in, OM1. So he had a repeat DES to OM1 and LAD. Then after 2014, the symptoms again reappeared. Almost class 3 to class 4, a new block came in LAD, D1, OM1, OM2. So he underwent bypass surgery at Medanta. Right? I will not tell the name of the surgeon, but the bypass was done to Lima to LAD, SVG to D1, SVG to OM1, and SVG to OM2, right? And just after 2 months, symptoms again reappeared. February, the bypass was done, and symptoms again came back in April itself. May, the TMT was done, which was strongly positive, and the grossly abnormal ST changes disappeared after more than 7 minutes, right? And then he went to Houston. He went to Houston, USA. And there, the angiogram was repeated. And you can see the results there. Lima to LAD was 100% block. Initial 90, and then at the end it was 100% block. Lima to LAD. Arterial graft was blocked. Then, distal stenosis. SVG to OM1 was 99% blocked at the ostium and 90% distal. And SVG to OM2 was 90% ostial disease. Graft was blocked, right? So three grafts were got blocked. He again developed symptoms. And then June 2004, balloon angioplasty was done to Lima to LAD. June mein karaya na apne operation? Lima, Houston mein karaya. Balloon angioplasty was done Lima to LAD, SVG to OM1, SVG to OM2. And then October, again he became class 3 to class 4. Just after 4 months of bypass angioplasty again, he is the patient. And then he came for the CAD heart program, the lifestyle modification program. Ab batao ab kaise ho, khade ho ke batao. Ab jab aaye the kaise kitna chalte the, abhi kaise halat hai. Abaz do.
Hello, Om Shanti. Jab main yahan April mein aaya tha, जब मैं बिल्कुल नहीं चल सकता था, सोर्बिडेट की गोली खा के मेरे को चलना पड़ता था. यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब की मेहरबानी से मेरी उन्होंने केयर प्रोग्राम अटेंड किया मैंने, और उसके बाद मेरे को काफी आराम मिला यहाँ पे. उसके बाद दोबारा मैं यहाँ आया हूँ, बिल्कुल ठीक होकर आया हूँ. 80% मेरे को काफी आराम है, 20% अब हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या.
ही वॉज टेकिंग अबाउट 6 to 7 टैबलेट्स ऑफ सोर्बिडेट पर डे, एंड हिज वॉक वॉज लेस देन 50 meters व्हेन ही केम हियर. After angioplasty, bypass, angioplasty. Right? At a very good hospital. And I'm in Houston then. He went to Houston. So that is the status. And I'll show you now the latest angiogram. Can we go back to the... See this. This was done at Houston. This graft. This is the LAD stenosis. Again angioplasty was done. Then OM1 was done. Then see the graft. Lima graft is 90 to 100% blocked here. Then the OM1 graft is blocked, OM2 graft is blocked. You can see. Just within 2 months. That is why lifestyle modification is important. And all the blocks, I tell you here, because we have done this, we have a database of more than 7,000 angiographically documented CAD patients and their psychological database. And we have been able to correlate each block with the thought patterns. Ostial LAD, proximal LAD, mid LAD, distal LAD, or D1, D2, or LCX, which part of the LCX, RCA, to which type of thought patterns. After looking at the angiogram, we can say that this patient has this type of personality, this type of behavior, and this type of relationships in the family and with his friends. And that is what we do. We modify their thinking pattern with meditation, Raja Yoga meditation, and along with that, diet is modified, exercise is modified, and they become normal. They are able to open their blocks. Please. Thank you. Ramesh Bansal, aajo. Ramesh Bansal, aajo. I am just telling you why lifestyle modification is important, right? This is Mr. Ramesh Mittal, Ramesh Bansal from Jind. He was from Rohtak. And you can see his angiogram. Aapki pehli angioplasty kab hui thi? 2013 mein angioplasty. April 2013 he had angioplasty to the RCA. And then 2014 he had his angioplasty done to RCA to NLCX, and then Feb 2015 he had a bypass done. Just within 2 years, three procedures, right? Because he's an industrialist, he can afford it. He's a non-diabetic, non-hypertensive, non-smoker, vegetarian. क्यों ब्लॉक हो गई आपकी आर्टरी बताइए?
जो चीज मुझे महसूस हुई वो सिर्फ मेरी सोच के कारण ब्लॉक हुई. जितने भी सिम्टम्स डॉक्टर शुरू में पूछते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो सभी बातों का जवाब होता है नहीं जी, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, वेट ज्यादा नहीं है, अल्कोहल स्मोकिंग कुछ भी कभी जिंदगी में आज तक किया नहीं, और डाइट भी हमारे घर की शुरू से ही बहुत सिंपल है. ये नहीं कि जो डॉक्टर्स अभी एडवाइस कर रहे हैं जिस डाइट के लिए, वो डाइट हम बचपन से लेते रहे हैं. तो उसमें डॉक्टर्स फिर एक बात कहते थे, या तो आपका फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली में मेरे फादर की बाईपास हो रखी है वैसे 18 साल पहले, पर मैं समझता हूं कि वो कारण मेरा नहीं है. मेरा कारण केवल मेरी सोच, जो अभी यहां अभी मैं पीछे मई में डॉक्टर साहब का कैड का शिविर था उसमें आया था, तो वहीं से मैंने निष्कर्ष निकाल लिया था कि मेरा केवल मेरा जो दिमाग है, मन है, बुद्धि संस्कार, ये मेरी गलत हैं, इसमें जो विकार हैं वही कारण है इसका. और जब तक वो ठीक नहीं होंगे, कितने ही बाईपास और एंजियोप्लास्टी करवा लूं, ये ठीक नहीं होगा. ये चीज मैं बिल्कुल फाइनल कर चुका था. अब मेरे मन में ये था बाईपास, इवन मैंने बाईपास करवाने के बाद भी डॉक्टर से मैंने उसी टाइम बात रखी थी कि डॉक्टर साहब आपने मेरा बाईपास तो कर दिया, क्योंकि मेरा एक्चुअली आपने देखा मेरा बाईपास भी मिड कैब हुआ. मेरा मिड कैब के अंदर केवल एक आर्टरी को बाईपास किया गया, एलईडी टू लीमा, क्योंकि दूसरी आर्टरीज में स्टेंट पेटेंट थे, ठीक काम कर रहे थे. तो वो मुझे तो पता नहीं इस बात का, पर डॉक्टर्स कह रहे थे वो सुन को हम बाईपास नहीं कर सकते. तो मेरे मन में ये थी कि ये जो स्टेंट लगे हुए हैं ये निश्चित रूप से बहुत जल्दी रुक जाएंगे. और इवन डॉक्टर ने भी मुझे वहां मैदानता में मैंने करवाई थी बाईपास, मैदानता में एक डॉक्टर हमारे जीन के ही मिलने वाले थे, मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया. उन्होंने कहा अभी तो आपकी ये मिड गैप तो कर देंगे, लेकिन कितनी बाईपास करवाओगे आप. उन्होंने खुद महसूस किया, मैंने मुझे भी महसूस किया, लेकिन मैंने कई जगह डॉक्टर से राय ली. मैंने उसी दौरान डॉक्टर सतीश गुप्ता का पता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी किस्मत में नहीं था, मैं इनसे संपर्क नहीं कर पाया. और मुझे एंजाइना पेन ज्यादा होता था, तो मुझे फिर डिसाइड करना पड़ा कि भी जो डॉक्टर्स कहते हैं वो मैं करवा लूं. मैंने अपोलो में भी, बालाजी एक्शन में कई डॉक्टर से राय ली, जो एंजियोप्लास्टी करने वाले डॉक्टर्स ने कहा,
हॉस्पिटल के नाम नहीं
लिया, हाँ, तो उन्होंने भी कहा भी ये तो करवाना ही पड़ेगा आपको. तो फिर मैंने वो बाईपास करवा ली, लेकिन फिर भी मुझे मन में डर ये रहा था पूरा, क्योंकि मैंने बाईपास तो करवाई लेकिन तो ठीक बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टेंट लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी रुक जाएंगे और फिर क्या करेगा तू. मुझे इस बात की बहुत चिंता थी, लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब की ये दूसरी कैड के शिविर में आया हूं, तो अब मेरा इतना विश्वास हो गया कि जब मैं सांसों का तो पता नहीं मेरे कितने बचे हुए हैं, पर मैं एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोबारा नहीं करवाऊंगा. और मुझे इतना विश्वास हो गया है कि अगर मैं, डॉक्टर साहब ने जो मुझे बताया है पहली बार भी पूरी बात बताई थी, मैं 100% उसको फॉलो नहीं कर पाया हूं, इसीलिए अब रिवाइज करने के लिए आया हूं. और अब उम्मीद करता हूं मैं करूंगा फॉलो, और मैं इसी से बचूंगा तो अदरवाइज मैं बचूंगा भी नहीं. ये बात मेरे मन में पक्की है,
100% बचूंगा. मेरे मन में नेचर कैसी थी, नेचर बताओ.
मेरे मन में विचार ज्यादा बुरे भी नहीं थे, लेकिन मेरे मन में क्या है, मैं बताता हूं, बुरे थे वो वास्तव में. बुराइयों की क्वालिटी बहुत ज्यादा है. तो जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं भाई, लोभ मोह क्रोध अहंकार होस्टिलिटी, और एक टाइम में बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा, इस टाइप से एक टाइम एक साथ कई काम करने की. मेरे पास जैसे मेरे
मैं आपको साइंटिफिकली बता देता हूँ, ठीक है. बेसिकली ही इज अ टाइप ए सेंसिटिव टाइप ए पर्सन, राइट, सेंसिटिव टाइप ए बिहेवियर. ही इज ए परफेक्शनिस्ट, ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी डन परफेक्ट, बट ही विल नॉट स्पीक आउट. ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, वेरी इमोशनल पर्सन, एंड डज नॉट सॉर्ट ऑफ यू नो वेंटिलेट हिज माइंड विद हिज वाइफ, विद हिज सन एंड विद हिज फ्रेंड्स. दैट इज वॉट हैज लेड टू, दैट्स वाई ही डेवलप्ड आरसी इंस्टेंट रिस्टेनोसिस. And LC RMS also is 90 to 95% blocked. But Lima graft has been done, so he is bound to develop more problems, right? But because he came, when he came was almost grade 3 symptomatic, class 3 symptomatic, was able to walk less than about 100 meters, right? And now he is able to walk 3 to 4 kilometers. He came in May, second time he has come. Check, next. Thank you so much. Ajay Trivedi, Ajay. So lifestyle modification is a must, right? For this person, for that matter, every person has to have lifestyle modification. Because now I am seeing in reports after the angioplasty that this, they write now, this is only palliative, whatever we have done is palliative, lifestyle modification is a must. People are writing now, right? Ajay Trivedi, I'll just show his reports to you first. Please. Nim. Slides. See, Ajay Trivedi is an industrialist again, he is from Mumbai and he is hypertensive for last 1 year, diabetes for last 7 years, and he has got diffuse disease in all the three vessels. 54% of Indians have got diffuse disease not amenable for angioplasty or bypass surgery, as compared to 21% Western people, right? His ejection fraction is 45%, he is a symptom class 3 NYHA, and see his angiograms. All the vessels are distal diffuse disease. So by putting any graft, this person will not improve, right? That's why the surgeons were not willing. Batai, wahan ke famous surgeon ne aapko kya bataya tha? Kitne paise lagenge? Naam nahi batana, jaise bata do.
Mujhe bataya gaya tha ki aapka special case hai, chances bahut kam hai, 30-70%, matlab 30% bachne ke chances hai. Phir bhi main risk leta hoon, kyunki uske saath hamara naam juda hua hai, to 25 lakhs rupees rahega. 5 लाख रुपया आपको और एक्स्ट्रा खर्चा होगा दवाई का मेडिकेशन का 30 लाख रुपीस का ऑपरेशन मिनिमम उन्होंने मुझे बताया था और यहां पे जब मैं आया था मई में तभी एक सोच लेके आया था कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहां पे कुछ होगा मैं नियर अबाउट 15 मिनट्स मुश्किल से चलता था और 15 मिनट्स में पूरा बॉडी परसुएट हो जाता था सांस फूल जाती थी चौथे ही दिन कुछ सोच बदले कुछ विचार बदले और चौथे ही दिन मैं 30 मिनट तक इजीली चल पाया सातवें दिन नियर अबाउट 35-40 मिनट्स चला और आज की तारीख में मैं बताता हूं कि मैं 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक लेता हूं 1 मिनट 130 स्टेप्स 45 मिनट्स कंटिन्यूअस और उसके बाद मैं लिफ्ट का यूज नहीं करता मैं घर पे जाता हूं थर्ड फ्लोर पे मेरा रेसिडेंस है और मैं एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप चढ़ता हूं जैसे डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है और ऊपर पहुंचने के बाद भी घर वाले को एहसास नहीं होता है कि ये 45 मिनट्स का वॉक करके आया और एक छोटे बच्चे की तरह स्टेप चढ़ के ऊपर आया है और ये बेनिफिट के साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली मैं बिजनेस में हूं और 24-25 की एज में एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं बिजनेस में आया और वही स्वभाव था परफेक्शनिस्ट टारगेट अचीव करना खुद के टारगेट खुद बनाता था और अचीव करने की एक जुनून था पिताजी मुझे बार बार बोलते थे कि इधर रुको अजय अपने को इतने पैसे की जरूरत नहीं है पर एक जुनून था पैसे के लिए नहीं कुछ बनने की कुछ करने की और उसके लिए गुस्से को भी पाल लिया नफरत को भी पाल लिया हर चीज को पाल लिया और प्रगति भी की उसके साथ साथ ये सब डायबिटीज लेके आ गया बीपी लेके आ गया मैंने कभी ड्रिंक नहीं लिया कभी स्मोक नहीं किया पर ये दो चीजों के साथ ये चीज भी आ गई ब्लॉकेज की
मैंने कर लिया
और जब मैं यहां पे आया तभी एक सिस्टम समझ में आया जो डॉक्टर साहब ने समझाया कि ईश्वर ने परमपिता परमात्मा ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है और हमने उसको इतना वायरस इन्फेक्टेड कर दिया है कि उसके अंदर कोई एंटीवायरस प्रोग्राम भी नहीं जाता कि उसको हम कोई वायरस से दूर कर सके इतना गुस्सा होता है जब डॉक्टर साहब पहली मीटिंग में बोले कि आपको ये सब चीजों से दूर होना है तो मुझे हंसी आई कि ये सब चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है कि प्राण और प्रकृति साथे जाए तो स्वभाव बदली नहीं हो सकता ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं पर नहीं हो पाएगा पर बाद में समझ में आया कि वो एंटीवायरस प्रोग्राम डालने का भी कोडिंग करते हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा उन्होंने एक चीज बताई थी कि आप जब भी काम करते हो काम से आदमी नहीं थकता आदमी थकता है काम करने के एटीट्यूड से वो स्ट्रेस से काम करता है, गुस्से से काम करता है, उससे आदमी थकता है, उससे तकलीफ होती है। बस ये चीज मैंने मीटिंग के बाद, यहाँ के सेशन के बाद मैंने बॉम्बे में अप्लाई किया। मैं पहले 8 से 9 घंटा काम करता था। काम करने के बाद जब घर पे जाता था तो मेरे रूम में मेरी वाइफ या बच्चे भी नहीं आते थे, उनको मालूम रहता था कि टेम्परामेंट हाई है तो वो अवॉइड ही करते थे। आज मैं 12 से 13 घंटे काम करता हूँ और फ्री होता हूँ, जाने के बाद भी आधा घंटा बच्चे के साथ खेल लेता हूँ। तो ये फर्क हुआ क्योंकि काम करने का एटीट्यूड ही चेंज हो गया। अभी गुस्सा नहीं है, स्ट्रेस नहीं है और नफरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, और उससे भी काम होता है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक ही चीज बोला था कि एक बार हिसाब लगा लेना कि आपने गुस्से से कितना फायदा कर लिया, आपने नफरत से कितना फायदा कर लिया, और आपने किस चीज को इनसिक्योरिटी फील करके किस तकलीफ को आपने अवॉइड कर लिया। अगर ये चीज नहीं करते तो ये नेगेटिव फीलिंग्स की जरूरत ही नहीं है। और यही चीज जब लाइफ में आती है तो उससे काफी बदलाव आ रहे हैं और काफी चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए मैं तो आप सबसे एक ही दुआ करूंगा, हम लोगों को हार्ट पेशेंट नहीं बोलते डॉक्टर साहब, दिल वाले बोलते हैं। तो हमारी ओर से, हर दिल वालों की ओर से, दिल से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दिल वाला आपके पास आता है अपने दिल की बात लेके, तो उनसे आपके दिल की बात सुनना और ये सच्ची राह जरूर दिखाना।
थैंक यू। आप जाए। अच्छा, मैं चाहूंगा ऐसी डिजीज किसने खोली है, डिफ्यूज डिजीज। मिस्टर अग्निहोत्री आ जाओ, इनका 5 मिनट आप अनुभव सुन लीजिए तो आपको पता लगेगा जितनी डिफ्यूज डिजीज, ये इससे भी ज्यादा डिफ्यूज डिजीज वो आपको बताएंगे। बताइए।
थैंक यू डॉक्टर साहब।
हाँ जी,
ओम शांति। जैसा कि मेरे कुलीग ने बताया, मेरे को भी 15 साल पहले बहुत सीरियस हार्ट अटैक हुआ। एंजियोग्राफी के बाद चंडीगढ़ के टॉप पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में एंजियोग्राफी के बाद जब सर्जन को रेफर किया गया, तीनों आर्टरीज ब्लॉक, 90 to 99%, 8 ब्लॉकेजेस, डिफ्यूज्ड आर्टरीज, वन ऑफ देम वाज कैल्सिफाइड इवन। और LMCA जो टॉप पे जहां से स्टार्ट होती है वहीं से पूरा ब्लॉक था, लंबा ब्लॉक था, जिसका कि मेरे को यही लगा क्योंकि सर्जन रिलक्टेंट थे सर्जरी करने के लिए, रेफर कर दिया दिल्ली। दिल्ली पहले हॉस्पिटल में गया, जवाब हो गया, दूसरे में गया जो टॉप था हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि आपका एंजियोग्राफी गलत रखता है, आप यहां तक पहुंच नहीं सकते थे। चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंचना कार में आए हो, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू नो, इसमें इतनी मतलब आपकी हालत खराब है कि आप तो रास्ते में जयराम जी की हो जाती आपकी। तो मैंने कहा चलो आप बताओ क्या करना, करें मैं एंजियोग्राफी द्वारा करके देखूंगा। मैंने कहा दोबारा कर लो, उसी समय उन्होंने एंजियोग्राफी द्वारा की एंड फाउंड द सेम पोजिशन, वो 8 की 8 ब्लॉकेजेस हैं और वाकई ही ये जो थी डिफ्यूज्ड आर्टरीज बहुत लंबी थी जिसकी। तो उन्होंने अपने सर्जन से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह के ऑपरेशन में डाल दो। सुबह ऑपरेशन में डाल दिया, तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में ले गए, अंदर लेके गए। जब उन्होंने फर्स्ट मेरे से आगे एक और था पेशेंट, उसको कहा इसको नंबर 1 टेबल पे डाल दो, मेरी फाइल देखी तो मेरी तरफ देखा, फिर फाइल देखी, फिर मेरी तरफ देखा, 2-3 बार ऐसे ही देखा। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, ये इतना क्यों देख रहे हैं। तो फिर फाइनली वो उनको कहने लगे इस पेशेंट को वापस ले जाओ रूम में, इनका ऑपरेशन कॉल करेंगे। 7 दिन का पैकेज था, 3.5 लाख रुपए जमा करवाया था और 6 बोतल खून की भी जमा करवा दी थी। तो हुआ 7 दिन निकल गए, मैंने डॉक्टर की वहां पकड़ी, डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, ये मेरा ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा है, रोज कहते हो कल होगा, वो कल आ नहीं रहा, पैकेज तो खत्म हो गया, आप कैसे होगा। कहते डॉक्टर साहब जो सर्जन है हमारे टॉप के वो फौरन चले गए, 3-4 दिन आप छुट्टी जा सकते हो, 3-4 दिन बाद आएंगे, तो 3-4 दिन बाद आप फोन कर लेना, मां बाप को डिस्चार्ज कर देते हैं, 3-4 दिन बाद फोन करके फिर आ जाना दोबारा, फिर आपका बाईपास करेंगे। तो मैं फोन करता रहा तो कहते अभी नहीं आए। तो मैं इन द मीन टाइम घर वाले मेरे को बाकी हॉस्पिटल में दिल्ली जितने सब में लेके गए। तो एक हॉस्पिटल है रोनी में, हार्ट का बड़ा टॉप का बना हुआ, वहां डॉक्टर के पास लेके गए मेरे घर वाले। तो वो डॉक्टर कहते इसका ऑपरेशन कौन करेगा, अगर आपको पता चले कि इस ब्रीफ केस में न्यूक्लियर बम्ब है तो आप क्या करोगे। तो घर वाले वैसे डर गए कि ये डॉक्टर हमें तो इतना डरा रहे हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर बम्ब है जो फट जाएगा। तो उन्होंने कहा मतलब हम वापस ले जाएं, कहते हाँ ले जाओ वापस। तो वहां से वापस ले जाके फिर मेरे मोहाली में हॉस्पिटल खुला, वहां ले गए। वहां भी उन्होंने कहा कि आपका तो सर्जरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके लिए फौरन से डॉक्टर मंगाने पड़ेंगे, खर्चा डबल होगा। तो मैंने कहा पहले मेरी 2 एंजियोग्राफी है, एक चंडीगढ़ की है, एक दिल्ली की है, 2 देख लो, अगर आप करोगे तो मैं पैसे जमा करा दूंगा, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। اتنا ٹائم نہیں میرے پاس، بڑا بڑا پیسے لاؤ ایسے ہی کر کے، اتنا ٹائم نہیں پیسے لاؤ پیسے لاؤ. میں نے کہا پیسے تو لائیں گے پہلے میری اینجیوگرافی دیکھو. کہتے پھر کل آنا کل دیکھوں گا. دوسرے دن پھر گیا میں اینجیوگرافی لے کے، جو بھی وہ اپنی فیس لیتے ہیں پہلے انٹری کی فیس تو لے ہی لیتے ہیں 500 روپے جاتے ہی، تو وہ نہیں. دوسرے دن پھر گئے، پھر انہوں نے کہا کہ پیسے لائے. میں نے کہا سر پیسے تو آپ نے کہا تھا پہلے اینجیوگرافی دیکھوں گا. تو کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں سرجری کر رہا ہوں، میں تو سرجری سے نکل گیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سرجری کیجیے، میں واپس جا رہا ہوں. میں واپس آ گیا. ان دا مین ٹائم میرے کو برہما کماریز، جولائی میں میرے کو اٹیک ہوا تھا، تو برہما کماریز راکھی باندھنے آئی اگست میں. تب تک کافی دن نکل گئے تھے، 15-20 دن نکل گئے تھے، راکھی کا ٹائم آ گیا. بہنیں راکھی باندھنے آئی، انہوں نے پوچھا کہ وہ لائن کلب میں آئی، میں لائن کلب کا پریزیڈنٹ تھا. ویسے بیسیکلی میں بینک میں جنرل مینیجر تھا، لائف سٹائل میرا بہت غلط تھا جس کے کارن یہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہیبٹس کافی خراب تھی. اور
کیا کام کرتے تھے پہلے؟
ہاں جی،
کیا کام کرتے تھے؟
میں بینک میں جنرل مینیجر تھا، اور میری جسٹ جو کمپنی تھی وہ کافی بیڈ کمپنی تھی، بائی ہائر اپس کی تھی. شام کو ڈیلی پینی تھی، نان ویج میں کبھی نہیں کھاتا تھا، لیکن یہ بیماری تھی ایک تھوڑی سی، ڈرنکس کی بیماری تھی. ہر روز رات کو پینی، کھانا باہر کھانا، یہ میرا تھوڑا سا لائف سٹائل سارا غلط تھا. ڈائٹ بھی غلط تھی، ڈائٹ ٹوٹلی غلط تھی، ویری ہائی فیٹ، اور رات کو لیٹ کھانا، ایون رات کو کئی بار کارڈ کھیلنے بیٹھ جانا، ساری ساری رات لگے رہنا. تو ایسا یہ لائف سٹائل تھا.
لائنز کلب کا پریزیڈنٹ ہے؟
ہاں، لائنز کلب کا پریزیڈنٹ تھا. تو اس میں مطلب، تو اس لائف سٹائل سے کچھ وہاں تھوڑا سا تھوڑی فیسلٹی بھی ہوتی ہے آفیسز میں بھی، تو میرے اس سے بھی کارن میرے کو کافی ٹینشن ہو گیا، اس سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو لائف سٹائل غلط تھا، ڈائٹ غلط تھی. اس کے بعد بہن میرے کو جب جہاں لے کے آئی کہ ہم وہاں لے کے چلیں گے، پہلے بہن بول رہی ہے کہ ہم آپ کو ماؤنٹ آبو لے کے چلیں گے وداؤٹ بائی پاس، وداؤٹ اسٹینڈنگ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل کم سے کم بھی 10 میں نے وزٹ کر لیے، کسی نے میرا بائی پاس نہیں کیا، تمہارے وہاں کون سا کچھ جادوگر بیٹھا ہے؟ تو بہن کہہ لیں کہ ہمارے پاس جادوگروں کا باپ ہے. تو میں نے کہا یہ تو بہن ایسے پھینک رہی ہے، میرے کو لگا بہن ایسے پھینک رہی ہے. میں لگا رہا اپنے چکروں میں، گھر والے کبھی کسی جوتشی کے پاس، کبھی بید کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، یہاں وہاں ساری دنیا میں دوڑ بھاگ کرتے رہے. لیکن جب کہیں کچھ نہیں ہوا، پھر گھر والے کہنے لگے چلو ایک وہ بھی ٹرائی کر لیں. تو جیسے ہی یہاں آئے، وہ ہماری برہما کماری بہن نے ڈاکٹر صاحب سے ملایا. ڈاکٹر صاحب نے، او پی ڈی میں بیٹھے تھے، تو او پی ڈی میں انہوں نے میرے کو ایسے اٹینڈ کیا. میں نے سوچا تھا او پی ڈی میں تو ڈاکٹر کیسے اٹینڈ کرتے ہیں، میں تھوڑا گھبرایا ہوا تھا بجارہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے کیوں گھبرائے ہوئے تھے مسٹر اگنیتی، یو آر نو پرابلم، ایبسولوٹلی یو آر آل رائٹ، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوا آپ کو، آپ یہ من سے نکال دو کہ آپ کو کوئی بیماری ہے. صرف آپ کو چار کام کرنے ہیں، یو ہیو ٹو چینج یور لائف اسٹائل، یو ہیو ٹو چینج یور ڈائٹ، تھرڈلی یو ہیو ٹو یو نو واک ایٹ اے پراپر ٹائم after sunrise in the morning and before sunset in the evening, and fourth one you have to learn the art of meditation. وہ ہماری بہنیں یہاں پر سکھا دیں گی. تو وہ چار کام انہوں نے جو بتائے، میں نے چاروں ہی آنےسٹلی کیا. پھر انہوں نے کہا ایک کیمپ اٹینڈ کرو، اور کیمپ میں انہوں نے بایولوجی آف باڈی اتنی سمجھا دی میرے کو، اتنا ٹریننگ دی، اتنا سمجھایا، کہ اس کے بعد تو میرا شاید کئی کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے پیس آف مائنڈ پہ پروگرام دیکھا ہو، جہاں کئی ڈاکٹرز میں بھی ڈاکٹر گپتا یہاں آئے ہوں گے، رمن گپتا یہاں شاید نہیں بیٹھے ابھی،
پیچھے پیچھے بیٹھے رمن گپتا، پیچھے
ڈاکٹر رمن گپتا آرتھوپیڈک سرجن اگر ہیں یہاں پہ،
بیٹھے بیٹھے پیچھے
بیٹھے ہیں، تو کھڑے ہو جائیے ذرا دو منٹ. یہ دیکھو ان کو بھی یہی سرجری کرتے ہوئے ان کو اٹیک ہوا تھا. تو ان کے میڈم سپریا، ڈاکٹر سپریا گپتا بھی ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے کو بتایا کہ ایسے ان کو ہے ہوا، لیکن اسٹینٹ بھی ڈل گیا، اسٹینٹ ڈالنے کے بعد بھی بہت پرابلم میں ہے، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، انسومیا ہو گیا ہے، اور بہت پرابلم ہے، پلیز ان کو تھوڑا کاؤنسلنگ کیجیے، گائڈ کیجیے. میں نے کہا یہی تو میری ڈیوٹی ہے، یہ تو میں کر رہا ہوں، پلیز. میں ان کے پاس گیا، ان کو بتایا سارا، کہتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا اس کو آپ چلیے تو صحیح، ایک بار ماؤنٹ ابو چلیے میرے ساتھ دیکھیے پھر، اور آج آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے نظارہ، کتنے خوش ہیں وہ، کتنا ناچتے ہیں، کتنا ڈانس کرتے ہیں، جو دو قدم چل نہیں سکتے تھے، اتنا پین ہو رہا تھا. اور ایسے کئی
آپ اپنی 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 رپورٹ دوبارہ اینجیوگرافی کیا
میری دوبارہ اینجیوگرافی ہوئی جب اسی ہاسپٹل میں، دوبارہ ڈاکٹر نے کہا کراؤ آپ جا کے، میں دوبارہ اینجیوگرافی کرائی، ڈاکٹر سے پکڑ کے بیٹھ گئے ایسے، ارے بھائی یہ کیسے، اسی ڈاکٹر نے میری اینجیوگرافی کی، ارے یہ کیسے ہو گیا، یہ 5 آرٹریز تو آپ کی کمپلیٹ کھل گئی، باقی 3 جو کام کافی کم ہو گئی، تو یہ کیسے ہو گیا، یہ تو آج تک کہیں بھی دنیا میں ہوا نہیں ہے، بہت سارے ڈاکٹرز نے ریسرچ کی، تو یہ تو ایسے آرٹریز کھلتی نہیں ہیں، آپ کی کیسے کھل گئی. میں نے کہا پہلے بند تو کرو، تب یہاں سے کرتے تھے، تو میں نے کہا پہلے بند تو کرو سسٹم کو، تو پھر میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کیسے ہوا. وہی ڈاکٹر یہاں پہ 2 بار ورلڈ ہارٹ کانفرنس میں، جو ابھی 3 سے 6 ستمبر یہاں پہ پھر ہو رہی ہے، اس میں 2 بار یہاں پہ آ چکے ہیں، ابھی 3ری بار شاید پھر آنے والے ہیں. تو اتنا خوش ہیں وہ، تو وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے آج کل وہ وہاں کے کارڈیولوجی کے، تو مطلب اتنا خوش ہے اور اتنے لوگوں کو مطلب فائدہ ہوا. پیس آف مائنڈ پہ بھی میں نے یہ پروگرام دیا, ودیشوں میں بھی ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے گیا, یو کے, یورپ, سب جگہ جا کے. تو یہ 3D ہیلتھ کیئر, دس از دی رائٹ اپروچ فار گڈ ہیلتھ, ٹو بی ہیلدی, ایور ہیلدی, ایور ویلدی اینڈ ایور وائز. دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ فرام ہیئر. اور میں میرے خیال 125 کے قریب ڈاکٹر صاحب کیمپ کر چکے ہیں, اور لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ڈاکٹر صاحب کو 2 بار پریزیڈنٹ آف انڈیا پرتیبھا پاٹل جی سے مل چکا ہے.
اوارڈ کی کوئی آوشیکتا نہیں,
ڈاکٹر عبد الکلام جی سے مل چکا ہے.
دیکھو اوارڈ ہم کو شیو بابا سے ملا, اور کچھ اوارڈ چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ جو ہے, اب آپ نے دیکھا کہ کیسے ڈیفیوز ڈیزیز والے اور 100% بلاکس والے. یہ مسٹر ادیرام کھڑے ہیں, بس ادیرام یہاں پر 82 ابھی 83rd ایئر میں ہے, آج سے 16-15 سال پہلے آئے تھے. ان کی آر سی 100%, ایل ای ڈی 100%, ایل سی ایکس 90% تھی, اور ود ان 8 منتھس ان کی آر سی اے, میں ہم نے اس میں 100% انکلوڈ نہیں کیا تھا اپنی اسٹڈی میں. 100% کو ہم نے کیا تھا, سر شکل دکھا دیں یہاں کے, 100% ان کی آرٹریز جو بلاک تھی ہم نے اپنے اسٹڈی میں انکلوڈ نہیں, 33 لیجنس تھے ہماری اسٹڈی میں, 100% ان کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا تھا فار میجرمنٹ. کنتو 100 میں سے بس یہیں رہو, بس یہی ادھر ہم جی یہیں رہتے, یہیں رہ جاؤ, بس یہاں دکھا, شکل یہیں سے دکھا دو. بس یہ 83 ایئر اولڈ ہیں ابھی, ہے نا, ابھی بھی سیبا میں آئے ہیں. تو یہ جو ہے آج سے 15 سال پہلے آئے تھے. تو ان کی جب ان کی جو ہے 8 مہینے میں اس کے 100% بلاک, ایک ایل ای ڈی والا 35% کھل گیا, ناؤ اٹ 65% اس سمے 8 مہینے کے بعد 2001 میں, اور اس کی جو ہے دوسری بار آر سی 30% کھل گئی, اور صرف ایل سی ایکس میں 30% بلاک باقی بچا ہوا ہے اس سمے. اب تو پورا کھل گیا, کھل گیا ہوگا نیچرلی, دوبارہ نہیں کرائی ہم نے انجیوگرافی. تو اب ناؤ ہی, اس دن کے بعد کیا حال ہے, کچھ تکلیف ہوئی ہے ابھی اس کے بعد کبھی 14 سال میں تکلیف ہوئی کبھی؟ 2004 کے بعد میڈیسن بھی لینی بند کر دی. میں نے منع نہیں, میں نے تو کہا اسپرین تو لو کم سے کم, وہ بھی اس نے نہیں کہا. ہی از اے آڈیٹر, ریٹائرڈ آڈیٹر ہیں, سینئر آڈیٹر آرمی سے ریٹائر ہوئے. ٹھیک ہے, بس چلیے میں آپ کو 2 منٹ میں صرف ایک کچھ انجیوگرام دکھا دیتا ہوں. چلو سلائڈ دکھائیں, سلائڈ یہ تو میں سب آپ جانتے ہوں گے, انجیوگرام چھوڑ دیتا ہوں سبھی. یہ جو بھی پروسیجر ہے وہ ایسنشلی پیلیٹیو ہے نا, 1-dimensional ہے صرف. اور یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم. ابھی 62 million لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہے, اس میں سے 37 million بلو 50 ایئرس ہے. ابھی ڈاکٹر موہت نے جیسے بتایا, مطلب 60% آف پیشنٹس آر بلو 60 ایئرس, بلو 50 ایئرس, اور آؤٹ آف 29 lakh پیپل 50 lakh پیپل آر بلو 50 ایئرس, ہو ڈائی فرام دس ڈیزیز ان انڈیا اونلی. یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹرز کو بھی ہارٹ کی بیماری ہو رہی ہے, انٹر ہارٹ اسٹڈی. یہ انٹر ہارٹ, یہ ہماری 3-dimensional ہیلتھ کیئر, اس کا ماڈل میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ملٹی ڈسپلنری اسٹڈی تھی, یہ اسٹڈی بھی پبلش ہو گئی 2011 میں, اور پچھلے 3 سال سے ابھی نمبر 1 ہے. مطلب لگ بھگ 2,35,00,000 لوگوں نے اس کو ہٹ کیا ہے. اس میں ڈاکٹرز, میڈیکل اسٹوڈینٹس, ریسرچرس اور پبلک, جولائی 2014 تک, ابھی شاید 4 crore سے اوپر ہوگا. تو ورلڈ میں ابھی نمبر 1 اسٹڈی ہے اس کیٹیگری میں. اور یہ ابو ہیلتھ ہارٹ ٹرائل چھوڑ دیتا ہوں. 80% پیشنٹس میں ٹی بی ڈی یا ڈبل ویسل ڈیزیز کے تھے. آپ انجیوگرام دیکھ لیجئے, 80% بلاک کتنا کھلا ہے. یہ شروع شروع کے ریزلٹس ہیں, اتنا لمبا بلاک کیسے کھلا ہے. 100% بلاک کھلا ہے, 100% کھلا ہے, ملٹیپل بلاک سارے کھل گئے ہیں. یہ دیکھیں 80% اور 90% بلاک کھلا ہے. اور یہ اس پیشنٹ کو 2 بار ایم آئی ہوا, اور اینٹیریئر وال اینڈ انفیریئر وال ایم آئی ہوا. ایجیکشن پیشنٹ 30% تھا, ریپیٹ انجیوگرام میں 45%. یو کین سی دی ریجنریشن آف والز. اور 80% بلاک کھل گیا ہے. یہ 20% ایجیکشن فریکشن تھا, ایک روہتک کا پیشنٹ ہے, اور اس کی ایجیکشن فریکشن پھر 50%. جو کام سٹیم سیل تھراپی نہیں کر سکتے, وہ کام راجیوگا میڈیٹیشن کر سکتا ہے. یو کین ریجنریٹ دی مایوکارڈیم. اور 100% بلاک کھلا ہے. کنٹرول گروپ میں کیا ہوا ہے, ہر بلاک دیکھو بڑھ گیا ہے, ان اسپائٹ آف ٹیکنگ دا سیم ڈائٹ, سیم ایکسرسائز. سو اٹس ناٹ دیٹ ڈائٹ, زیرو آئل ڈائٹ ول ناٹ اوپن ایئر بلاکس. ڈیلی واکنگ ول ناٹ اوپن ایئر بلاکس. واکنگ, میڈیٹیٹو واک ول اوپن ایئر بلاکس, رائٹ. اینڈ ہم بولتے ہیں شدھ ساتوک ڈائٹ ول اوپن ایئر بلاکس, رائٹ. ساتوک مینس وچ ول انکریز 7 energies آف دا سول. اینڈ آلسو نیکسٹ, اور ایوری بلاک از ریلیٹڈ ود یور تھاٹ پیٹرنس. Unless you change your thought patterns, you cannot open the blocks. Right? جیسے لوگ پامس لوگ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں نا, آپ کی آنکھ اس میں یہ ہونے والا ہے, یہ ہوا ہے ابھی تک,
हमें एंजियोग्राफी देख के पता लगता है इसके साथ ये हुआ है, ये होने वाला है, और देखिए ब्लॉक बढ़ गया है ना। और हेल्दी लाइफ, एक और एंजियोग्राम में दिखाता हूं, ये 100% ब्लॉक है, ये लेडी अहमदाबाद की है क्या वो, चलो कोई बात। रिपीट एंजियोग्राम देखिए पूरा खुल गया, ये 100% स्टेनोसिस था। और बेसिकली इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हम सारे चेंज कर पाए, ईजी एक हफ्ते में ईजी, बीटा बीटा पैटर्न डोमिनेंट है, अभी आफ्टर 7 डेज अल्फा पैटर्न डोमिनेंट है, बीटा कम हो गया, थीटा बढ़ गया, डेल्टा भी बढ़ गया। अगर आप देखेंगे तो अल्फा बढ़ता गया, बीटा कम होता गया, थीटा बढ़ गया, एक साल के बाद डेल्टा हो गया, मतलब ओपन आईज डेल्टा रिदम हो गई, दैट मीन्स पर्सन इज सो रिलैक्स ही कैन एंजॉय लाइफ। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सिंपैथेटिक, द रेड वन इज सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, ग्रीन वन इज पैरासिंपैथेटिक, एक साल के बाद दोनों की हार्मनी हो गई। हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, द स्ट्रेस हार्मोन कैटाकोलोमिन लेवल्स 7 डेज में सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, द सीरोटोनिन एंडोर्फिन लेवल्स 7 डेज में सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं, और कॉर्टिसोल लेवल्स 7 डेज में, देखिए सी दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन 8 AM एंड 4 PM सैंपल्स। और इंसुलिन लेवल्स, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स सिग्निफिकेंटली कम हो गए इन स्पाइट ऑफ रिडक्शन इन शुगर लेवल्स, दैट मीन्स बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरा ठीक हो जाता है, विद लेस इंसुलिन यू आर एबल टू हैव बेटर शुगर कंट्रोल, राइट, बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ये भी छोड़ देते हैं, the events were you know highly significant, almost odds ratio of 11 times, 93% patients could open their blocks. तो बेसिकली कल मैंने ये बात कही थी कि बेसिकली वी हैव टू एम्पावर अवर पेशेंट्स, हील दाई, देर इज ओनली 1% ऑन दिस प्लेनेट हु कैन हील यू, दैट इज यूर सेल्फ ओनली। डॉक्टर्स आर सफरिंग, डॉक्टर्स हैव मोर हार्ट अटैक्स एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, डॉक्टर्स हैव मोर हाइपरटेंशन, मोर डायबिटीज, मोर डिसलिपिडीमिया, मोर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बिकॉज दे आर द हाइएस्ट प्रोन पीपल पर्सन इन द सोसाइटी। सो वी हैव टू टेक, एंड हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस, राइट, एंड इट्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। So this human being means, human means outer self, body, and being means inner self. So once you are inner self conscious, you are automatically free from disease, stress free. So basically soul is nourishing the body with 7 energies through mind. What is mind? Mind is team, thoughts, emotions, attitudes and memories. You make your team positive and practice meditation, energy will flow to each and every cell of the body, and one energy specially will flow to one organ system. Like for the heart, it is love. What is love? Love is unconditional dignified care for everyone. That is love. What is peace? Only positive thoughts. What is happiness? Super sensuous joy. When you go beyond sensual happiness, sensual enjoyment, that is real happiness, which makes your LDL receptors active, which makes your liver to make more HDL, which makes your liver to more, you know, make more clot busters. And then this is how you do it. Get up in the morning, 4 a.m. you do meditation, so in a soul conscious way. I always say ABCD, just revise and realize ABCD. A means Atma, B means Baba, God, C means connection, my relationship with him, and D for drama. And just revise and realize it. Automatically you will reach that stage of bliss. And then up to 8 a.m. you try to remain in silence. If you remain in silence up to 8 a.m. because that after half an hour getting up, you start, there's a cortisol release starts depending on your team. So up to 8 a.m. try to be in silence and only practice positive team. And we listen to Murli. For last 30 years, I never miss my Murli. Murli means godly versions, 7 to 8. I have never missed it. Come what may, in India or abroad, or in India or other parts of the country, I have never missed it. Even in the train, I will not miss it. Up to 8 a.m., if you can practice positive team, there is a harmonious release of cortisol hormone. And once this cortisol release is harmonious, then throughout the day you are peaceful, loveful and happy. But up to 8 a.m., if you do something negative, you have negative team from newspaper, television, mobile, internet, then you are gone. Then cortisol releases so much that you are bound to suffer. Whole day you will have irritation, anxiety, pressures. And then for the body, the energy travels to the body, and then for the body, take Shuddha Sattvic Bhojan. Right? Which food which increases your spiritual energy. Tamrasic is your fried foods, junk food. They make you lazy. And the tamasic food is which stimulates your sympathetic system, like tea, coffee, cold drinks, non-veg, garlic, onion. It has been documented, right? Avoid these type of foods. Daily have morning walk after sunrise, after cleaning your bowels. Right? 45 minutes. With a walk speed of 120 steps in a minute. And sleep at 10, get up at 4. Okay? And no addictions. And that's it. And this is how we run the program. And this is how we dance with them. And we enjoy everyone. So this, now we have started primordial prevention in schools and colleges. These are our Dilwalas. We call them Dilwalas. They have more than 7,000 Dilwalas. They go to each and every part of the country and they do this. Primary prevention for hypertensive, diabetics, obesity, dyslipidemic people. And secondary prevention, now we have more than 7,000 patients in 123 groups and more than 1,000 repeat angiograms. Documented benefit shown. And now this program is all over the world. Spiritual care, the basic take-home message is spiritual care first. Three-dimensional healthcare means spiritual care, that is, be natural. Whatever you do during the day, be inner self-conscious, not body or role conscious. Just practice these seven energies, and for this practice, never miss your meditation in the morning. From 4 to 4:45. 30 minutes of bliss. And then mental care. Up to 8, try to be in silence. And listening and churning of jewels of knowledge, that is Murli from 7 to 8, will harmonize the adrenal surge. And for the physical body, sattvic diet, exercise and sleep. Eat natural. More fruits, vegetables, sprouts, what is being told today, right? And be in the lap of nature, daily morning walk with sunrise and sunset, evening stroll with sunset, and have proper sleep. And whenever it is required, medicines, do take medicines. Even angioplasty is required, do go for it, primary angioplasty. Or bypass, do go for it, but that will not solve the solution. Right? That is not the ultimate solution. You have to go for lifestyle modification. And this, we are organizing conference, World Congress on Clinical Preventive Cardiology from 3rd to 6th September. Anyone interested to participate in that? And this you can register on this website. Om Shanti.
थैंक यू डॉक्टर सतीश गुप्ता. तो आपने देखा कि किस तरह मेडिटेशन का ये एडजंक्टिव नहीं डायरेक्ट बेनिफिट हमको मिलता है. एंड इट इज जस्ट द पावर ऑफ माइंड एंड सोल कॉन्शियसनेस. स्टेज में जब हम आते हैं तो जो माइंड हमारे को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है वो माइंड हमको दोबारा हेल्थ भी प्रोवाइड कर सकता है. एंड इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हार्नेसिंग एंड कनेक्टिंग अवर ओन सेल्फ विद द सुप्रीम. और सुप्रीम से एनर्जी लेके वी कैन डायरेक्टली एक्चुअली हील अवर ओन सेल्स. और इस चीज को प्रैक्टिकली हम सभी एज डॉक्टर्स भी, अगर हम डॉक्टर्स नहीं भी हैं, कई लोग डॉक्टर्स नहीं भी हैं, तो भी अपनी लाइफ के अंदर हेल्दी डाइट, ना केवल शरीर बट मन के लिए भी एक्सरसाइज, ना केवल शरीर के लिए लेकिन मन के लिए भी एक्सरसाइज, और रेस्ट, ना केवल शरीर का रेस्ट लेकिन मन का रेस्ट अर्थात मेडिटेशन, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम है, इसके साथ साथ मैं समझता हूं और भी डिजीज के अंदर जिनके अंदर हार्मोन सिस्टम एक्टिवेटेड होते हैं, उनको भी हम लोग कंट्रोल में लेके अपने आप को हील कर सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे लिविंग एग्जांपल्स आपको यहां पर मिलेंगे. आपको कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेरीज भी हैं, आप लिखकर भेज सकते हैं या डॉक्टर साहब से पर्सनली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आप सारा आंसर प्राप्त भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल एविडेंस बेस्ड. ये नोशन नहीं है कि आपको ये प्रचार किया जाए, क्योंकि मैं खुद एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं डॉक्टर रतन भी, एंड हम लोग लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम्स हम लोग कंट्री के अंदर करते हैं. लेकिन हमने देखा है कि पेशेंट को कॉस्मेटिक रिजल्ट, केवल स्टेंट डाल दिया और उसके बाद चलो अब जाओ तुम्हारी आर्टरी ठीक हो गई, उससे हीलिंग उसकी नहीं होती है. जब तक हम उसकी साइकी के अंदर स्ट्राइक कर उसको हीलिंग वाइब्रेशंस देकर उसको बताते नहीं कि इसका रूट कॉज क्या है, जो कि साइंस एस्टैब्लिश कर चुकी है, तो रीब्लॉकेज के चांसेस बहुत फास्ट हो जाते हैं. और मैं समझता हूं कि जैसे वो डॉक्टर्स को कह रहे थे कि उन्होंने ये मांगा वो करा, लेकिन वो लौकिक डॉक्टर्स जो हैं उनका अपना कार्य अपनी जगह सही है, लेकिन अगर यही अच्छी नॉलेज हम सभी डॉक्टर्स अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट करें, सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट हो, एनेस्थेटिस्ट हो, फिजिशियंस हो, पैथोलॉजिस्ट हो, सभी लोग इस भावना को लेकर जब हम लोग पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं या पेशेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो हीलिंग है वो हम लोग पैरामाउंट, उसको हम लोग 10 times मल्टीप्लाई करके पेशेंट्स को दे सकते हैं, और ये आप सभी लोग खुद इस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस पूरे सेशन का आपके सामने रखने का पर्पज यही था कि केवल मेडिटेशन अपनी हीलिंग के साथ साथ हाउ ब्यूटिफुली वंस यू हील योर ओन सेल्फ, बिकॉज हेल्दी मीन्स हील थाय सेल्फ, हेल्दी मीन्स हील थाय सेल्फ। तो हम लोग जब अपने आप को हील करते हैं तो ये पावर ऑफ मेडिटेशन कैसे हम सब डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन एंड दूसरे डिसिप्लिन के अंदर हम लोगों को हील करने के लिए, पेशेंट्स को हील करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और आप इसकी डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं, और जब आप खुद इसको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो कम अप विद वेरी नाइस थिंग्स। देयर आर न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज विच आर स्टिल ऑन गोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर सतीश फॉर अ वेरी इलेबोरेट। मैं समझता हूँ ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली इन्होंने बहुत शॉर्ट किया, 1 घंटे की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है पूरी, लेकिन आपको जो फोल्डर्स मिले हैं मैं देख रहा था उसके अंदर ये पूरी स्टडी है, तो इफ यू गेट टाइम आप उसको जरूर, अगर डॉक्टर्स हैं तो जरूर जाइएगा, नहीं भी हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के और डिस्कशन आप जरूर देखिएगा, तो यू विल गेट एन ओवरव्यू दैट हाउ ब्यूटिफुल। वेबसाइट पे भी पूरी वेबसाइट है तो फुल इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है, तो इसको प्रैक्टिकली आप कैसे यूज कर सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह आपको प्रॉपर गाइडेंस इसके अंदर मिलेगी। तो अपनी हीलिंग के साथ साथ आप जब चार्ज होके जाएंगे तो रेगुलर इस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे उन्होंने देखा ना कि उस लाइफस्टाइल जो अल्कोहलिक लाइफस्टाइल है जैसे वो बता रहे थे और कितना डिफिकल्ट लाइफ स्टाइल था हार्ड टू इमेजिन, लेकिन वो परमात्मा का बैज लगाकर परमात्मा को उन्होंने अपना जीवन दिया है एंड द बेनिफिट इज ऑलरेडी फ्लोइंग इन हिज लाइफ। तो ये एक बीमारी नहीं, सभी बीमारियों के अंदर आप ये हीलिंग को ला सकते हैं। ओम शांति, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर रतन ऑल्सो फॉर कमिंग एंड थैंक यू डॉक्टर गौरव। हम लोग केवल 2 मिनट मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं, साइलेंट मेडिटेशन, सिस्टर उषा भी आ चुके हैं, फिर हम लोग सेशन को विराम लगाते हैं।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो,